ओम शांति। एक बहुत अच्छी बात पर आज चिंतन करेंगे। केवल चिंतन नहीं, लेकिन सभी अपने को इसका स्वरूप बनाएंगे। मेरे ख्याल में ये सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। सभी सोचेंगे हम कितने बड़े हैं और हमारे कर्तव्य कितने महान हैं। भविष्य में हमें क्या क्या बड़े कार्य करने हैं। हम बहुत बड़े हैं। कितने बड़े बोलो? वो लंबाई में बड़े नहीं, कितने बड़े? पूर्वज। पूज्य भी हैं, लेकिन वर्तमान समय के लिए पूर्वज। और पूर्वजों को करनी है सबकी पालना। बिल्कुल अपने से बात करेंगे सभी, आंख बंद करके करेंगे, अपने घर में जाकर। हम बहुत बड़े कार्यों के लिए हैं, हम छोटे नहीं हैं, पूर्वज हैं। जो सेवाओं के कार्य अपने अपने हम सब कर रहे हैं, वो तो छोटे ही होते हैं, उनका एक दायरा है। जिसकी जो ड्यूटी है उसको वही करनी है। किसी को ऑफिस वर्क है, कोई अकाउंट में है, कोई कंस्ट्रक्शन में है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, लेकिन वही कार्य यदि निष्काम भाव से और विश्व कल्याण की भावना से किया जाए तो वही कार्य बहुत महान हो जाता है। निष्काम भाव और विश्व कल्याण का भाव। सभी जो ग्रस्त में रहने वाली माताएं भी बैठी हैं, बहुत अच्छी तरह अपने में ये धारणा बना दें, हम बाबा के लिए हैं, हमारा हर कार्य बाबा के लिए है, विश्व परिवर्तन के लिए है। हमारा कार्य छोटी प्राप्ति के लिए नहीं कि हम पुण्य करें और उसका फल मिल जाए, वो तो ऑटोमेटिक है, पर हमारे कार्य बहुत महान हैं, विश्व परिवर्तन के लिए। हम सब भगवान के साथी हैं उसके इस महान कार्य में। तो अपने स्वमान को बढ़ाएंगे बहुत। मैं एक महान आत्मा हूँ, पूर्वज हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, साथ में बाप समान हूँ। मुझे बाप समान बनना है। यदि ये सोचेंगे तो कैसा लगेगा? बड़ा भारी काम है ये तो। ये तो होगा ही नहीं, अभी तो कोई बना ही नहीं। लेकिन मैं बाप समान हूँ तो वही वाइब्रेशंस, वही विचार संस्कार हमारे अंदर जागृत होने लगेंगे। हम बहुत बड़े हैं। अब के हमारे कार्य भी बहुत बड़े चल रहे हैं। कौन कौन से? सबको सत्य ज्ञान देना, सबको प्रभु से मिलन कराना, छोटा काम नहीं है। चारों युगों में सबसे बड़ा इस महान कार्य में हम सब लगे हैं। ये कार्य भी निष्काम भाव से करते रहें। दूसरों को ज्ञान देने से हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन वो खुशी भी हमारी सूक्ष्म होती चले। वो खुशी बाह्य मुक्ता की खुशी ना हो जाए, वो खुशी हमारे अहम को बढ़ाने वाली खुशी ना हो जाए। आज की मुरली भी सभी ने सुनी है, बहुत बहुत गुह्य। त्यागी महात्यागी सर्वस्व त्यागी अलग अलग डिफाइन कर दिया बाबा ने तीनों को, मैं और मेरेपन का त्याग बहुत सूक्ष्म चीज जिसके कारण ब्रह्मा बाबा नंबर वन बन गए और जो अश्रत्नों का भी आधार है। याद है ना पॉइंट्स, मैं थोड़ी सी याद दिला देता हूं आपको। फरिश्ता स्वरूप, बहुत सुंदर और गुह्य बातें थी आज की मुरली में, उसको आप अपने चिंतन में लाएंगे बहुत अच्छी तरह। और पहली बात थी सबसे अच्छी, जो सदा मुझे याद करते हैं वो सदा मेरे साथी हैं, और पूरे कल्प में जो महान आत्मा नंबर वन आत्मा ब्रह्मा बाबा के साथ रहेंगे उसका आधार होगा समानता। जितना समान बनेंगे ब्रह्मा बाबा के विचारों में, संस्कारों में, प्योरिटी में, रॉयल्टी में, त्याग में, समर्पणता में, उतने जन्म जन्म उनके साथ रहेंगे। सभी को ये याद रहे, बाबा ने बहुत अच्छे शब्द बोले, चढ़ने में भी साथ, गिरने में भी साथ, विक्रमाजीत में भी साथ तो राजा विक्रम में भी साथ, साथ ही साथ फैमिली का भी इम्पोर्टेंस हो जाएगा। और सभी को ये याद रहे, ब्रह्मा बाबा पहले नंबर की आत्मा, अष्टरत्न, 108 रत्न, ये सभी चारों युगों के हीरो एक्टर हैं। जितने बड़े बड़े महान कार्य हिस्ट्री में हम सुनते हैं, महान शासकों की बात सुनते हैं, ऐसे सम्राटों की बात सुनते हैं जिन्होंने भारत को एक किया, जिन्होंने भारत की सुरक्षा की, वो सभी ये हीरो एक्टर ही हैं। आपको याद हो बाबा ने कुछ समय पहले ही मुरली में एक बहुत गुह्य बात कही, तुम्हारी राजाई सतयुग और त्रेता युग चलकर समाप्त नहीं हो जाती, वो द्वापर और कलयुग में भी चलती रहती है। तो हीरो एक्टर्स के साथ हमारा पार्ट हो तो हम भी हीरो बन जाएंगे ना। समानता, तो मैं उस महान कर्तव्य की आपको याद दिलाने से पहले आज के वरदान के बारे में फिर से याद दिला दूं। हम फरिश्ते हैं, सवेरे उठते ही ब्रह्मा बाबा को ये मन पसंद गिफ्ट दे दो, कल से चालू करेंगे। उठते ही मैं आत्मा परम धाम से इस देह में आई हूँ और मेरा ये देह भी लाइट का है, मैं फरिश्ता हूँ, तो क्या करेगा बाबा? याद करो बाबा ने कहा, बाहों की, अपनी बाहों में समा लेंगे, यानी बाबा से मिल लेंगे, हम गले मिल जाएंगे सवेरे। और जो ऐसी स्थिति में रहते हैं, सर्वशक्तिवान उनके सिर पर छत्र छाया रहता है। जब जीवन में कोई विघ्न आ जाए तो दोनों उनकी छत्र छाया बन जाते हैं। बहुत सुंदर बात है, कितनी बड़ी बात है कि हमारे पास विघ्न आ जाए और भगवान हमारी छत्र छाया बन जाए, ब्रह्मा का हमें साथ मिलने लगे, वो अपना वरदानी हाथ सिर पे रख दे, मैं हूँ तुम्हारे साथ, आज से सोने समय और कल उठते ही इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस सभी करेंगे, ठीक है ना? मुझे बहुत प्रिय लगी ये बात, जब सुनी, बहुत बार सुनी है और हम सब इसकी प्रैक्टिस करते ही रहे हैं। तो पहले तीन दिन कल से मैं फरिश्ता हूँ 108 बार सारे दिन में याद करेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ, मैं शांति का फरिश्ता हूँ, मैं मैसेज देने आया हूँ फरिश्ता इस धरा पर, मैं मैसेंजर हूँ भगवान का, मैं फरिश्ता हूँ, मैं संसार में मेहमान हूँ, मैं तो फरिश्ता आया हूँ अपना कार्य करके वापिस। ये देह प्रभु की अमानत है। आज के शब्द, आज तो बाबा ने बहुत सुंदर जैसे क्लास करा दी थी, सवेरे इसकी बहुत अच्छी फीलिंग करेंगे और अपने अंतर मन में समा लेंगे। हम फरिश्ते स्वरूप में रहेंगे तो परिस्थिति आने पर बाबा हमारी छत्र छाया बन जाएंगे। बहुत बहुत गहरा, बहुत गहरी बात गुड फीलिंग में लाने की है। हमें अपने भविष्य को लेकर चिंता करने की जरूरत ही नहीं, हमारी चिंता तो स्वयं बाबा करते हैं। हम महान हैं और हमें आगे चलकर बड़े बड़े कार्य करने हैं। मैं कुछ कार्य आपको याद दिला देता हूँ, हरेक उसमें से अपने कार्य चुन ले, और हम सभी को ये कार्य करने हैं। हमारे शांतिवन में, पांडव भवन में जितनी पुरुषार्थ की लहर चले, सारा यज्ञ निर्विघ्न, तो ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम स्वयं भी और अपने साथियों में भी अच्छे पुरुषार्थ की लहर रखें, तो सभी अपने महान कर्तव्यों को अब याद करेंगे। भाई दिलवाड़ा में जाते हैं तो खुले दिल से बोल देते हैं ना, ये हमारी यादगारें हैं, और उनको लगता है ये हमारे तीर्थांकर हैं, ये क्या कह रहे हैं छोटे छोटे लड़के। तो इससे बचना है, सबकी अपनी भावनाएं होती हैं, उसे हमें भी सम्मान देना है। तो महान कर्तव्य पहला, मैं एक बात आप सबको कहता आया हूं कि दिनों दिन संसार में मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं, और बहुत जल्दी वो समय आ जाएगा जब संसार के बहुत लोग रात को सोया नहीं करेंगे, तो हमें उनको सुलाकर सोना होगा। आप में से जो भी अपने को इसके लिए तैयार करे वो करे। इसका अर्थ ये नहीं हम सोएंगे तो वो भी सो जाएंगे, हम सोएंगे वो जगते रहेंगे। हमें गुड वाइब्रेशंस देकर, पूर्वज बनकर, संकल्प देकर सो जाओ, परमात्मा गोद में सो जाओ। ऐसे संकल्प देकर सभी के चित्त को शांत करना होगा। कौन ये काम कर सकेंगे? नहीं, क्वालिफिकेशन क्या होगी उनकी? कौन ये काम कर सकेंगे? जिनके चित्त शांत होंगे, जो पूर्वज स्वरूप में स्थित हो गए होंगे, और जो जिनका मन सभी के लिए प्यार और सुभावनाओं से भरा होगा। आत्मिक दृष्टि का अभ्यास भी लंबा समय किया होगा, तो हम उनसे जुड़े रहेंगे सूक्ष्म वाइब्रेशंस के रूप में, और हमारे संकल्प उनके चित्त को शांत करेंगे। क्यों? नींद क्यों नहीं आएगी मनुष्य को, और जिनको नींद नहीं आती क्यों आती है? मेडिकल साइंस तो इसकी अलग अलग उत्तर देगी, लेकिन हमारा उत्तर है ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाता है। जो मनुष्य के अंदर बहुत सारे पाप कर्मों के तरंगे हैं, जो विकारों की इफेक्ट है, वो एक्टिव हो जाता है, ज्यादा एक्टिव। तो ब्रेन शांत होता ही नहीं, नींद माना ब्रेन बिल्कुल शांत रिलैक्स, वो होता ही नहीं। जैसे बहुतों को अनुभव होता है कि नींद आ रही और सोने गए तो एक्टिव हो गया ब्रेन, फ्रेश हो गए, हमें अच्छे वाइब्रेशंस देकर ये बड़े काम करने होंगे। कितना बड़ा पुण्य होगा सोच लो, जो नहीं सोते उन्हें पता है कितनी बड़ी सजाएं होती हैं वो धर्मराज की। कितना बड़ा पुण्य होगा हम उन्हें उनके चित्त को शांत करें, ये काम करेंगे तो हम तो फिर आप ही गहरी सुखद नींद सो जाएंगे। दूसरा काम, इस संसार में विघ्नों के पहाड़ गिरेंगे, हर परिवार हर मनुष्य विघ्नों की चपेट में आ जाएंगे, हमें विघ्न विनाशक बनकर सभी के विघ्नों को नष्ट करना होगा। ये काम वो कर सकेंगे जो लंबा काल निर्विघ्न रहे हैं, लंबा काल जिन्होंने अपनी स्थिति को विघ्नों से मुक्त रखा है, जिन्होंने न दूसरों के लिए विघ्न डाले और जो दूसरों के द्वारा डाले गए विघ्नों में भी अचल डोल रहे। क्योंकि हम ये तो सियोरिटी नहीं कर सकते कि कोई हमें विघ्न डालेगा नहीं, लेकिन ज्ञान के बल से योग बल से हम अचल डोल रहे तो हमारे अंदर दूसरों के विघ्नों को नष्ट करने की ताकत आ जाएगी। लंबा काल स्वमान का अभ्यास, कौन सा, मैं विघ्न विनाशक हूँ, ये दूसरा बड़ा काम करना होगा। एक जगह बैठकर ही लाखों के विघ्न हरने होंगे। तीसरा बड़ा काम, वो बहुत बड़ा है, उसके लिए स्थिति भी बड़ी चाहिए, लेकिन हमारे इस ग्रुप में बहुत अच्छी स्थिति वाले हैं। आप सब इस कार्य को अपना ध्येय बनाएं। बाबा ने कहा तुम्हारे सामने रोगियों की भीड़ आया करेंगी, तुम सबको एक साथ दृष्टि दोगे और वो रोग मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ये काम वो कर सकेंगे, विनोद भाई आपको करना है, जिन्होंने अपनी स्थिति को निर्मल बनाया और निर्विकारी बनाया होगा। बिंदेश्वरी देख रहा है कि मैं नहीं करूंगा क्या, आप भी करना। जिन्होंने अपनी स्थिति को निर्विकारी बना दिया, लंबा काल, प्योरिटी इज द बेस्ट हीलिंग एनर्जी, प्योर एनर्जी इज ए वंडरफुल हीलिंग एनर्जी, ये याद रखना। प्योर दृष्टि पड़ते ही लोग निरोग होंगे, लोग इसे चमत्कार कहेंगे, पर ये इफेक्ट होगा प्योर वाइब्रेशंस का। ये वही कर सकेंगे प्योरिटी अपनाने के बाद। मैं थोड़ा सा कह दूं, कई प्योर, सभी प्योर आत्माएं यहाँ बैठी हैं जो मेरे सामने हैं, मैं कईयों को देख रहा हूँ, कई बहुत पवित्र हैं, लेकिन उनकी प्योरिटी सिंपल है। प्योरिटी एक पावर बन जाए, हम पवित्रता के सूर्य बन जाएं, हमारी पवित्रता का प्रकाश जग को प्रकाशित करने लगे, इसके लिए न केवल व्यर्थ संकल्पों से मुक्त पर साधारण संकल्पों से भी मुक्त। इम्प्योरिटी की जो बहुत स्थिति है उसको आप जानते हैं, जो आज भी मुरली में था, याद है ना, न लगाव न घृणा, घृणा क्योंकि जिससे हमारे मन में नफरत होगी, ईर्ष्या होगी, उसे भी तो हम याद करेंगे। स्वार्थ हमारा पूरा नहीं हुआ, उसके संकल्प चलते रहेंगे, हम उसे याद कर रहे हैं ना। तो इससे हमारी पावर ऑफ प्योरिटी, डिविनिटी ऑफ प्योरिटी, रॉयल्टी ऑफ प्योरिटी नष्ट हो जाती है। इसलिए महान संकल्प, महान दृष्टि, महान स्वमान और योग सकार मूल्य में कभी आया है, जब तुम्हारी बुद्धि एक के स्वरूप में निरंतर स्थिर हो जाएगी, तब तुम्हें कहेंगे संपूर्ण पवित्र। तो प्योरिटी को हमें अपनी ताकत बनाना है, जो हमारे संसार की ताकत बन जाए, हमारे भारत की शक्ति बन जाए। ये काम चुन लें आप, जो भी आप में से चाहे इस कार्य को चुने, ये महान कार्य होंगे। अब के कार्य तो बहुत साधारण हैं, तो ऐसा ना हो हम इन छोटी छोटी सेवाओं में उलझ गए हों। सेवाओं को निमित्त भाव से, सहज भाव से करते रहें। सेवा में न आसक्त होना है, न मेरापन आए, न वो सेवाएं हमारे लिए बंधन बने। हम निकले हुए हों, जैसे ये तो हमारे कार्य हैं, नेचुरल हम कर रहे हैं, पर असली कार्य जो बाबा के शब्द हैं, ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें लेकर चारों ओर फैलाना, ये है तुम्हारा असली कर्तव्य। बाकी कार्य तो निमित्त मात्र हैं। चौथा महान कार्य, विनाश के कारण इस धरातल पर भय बहुत फैलेगा, डर, हर व्यक्ति भयभीत होगा। किसी को विनाश डराएगा, किसी के उसके पाप कर्म डराएंगे, किसी के मनोविकार उसको भयभीत करेंगे, किसी को मृत्यु का भय जागृत हो जाएगा। अभी मैं गया तो तीन बहनें ऐसी मिली जो ये भी अगर सुन लें कि किसी ने शरीर छोड़ दिया है तो इन्हें सारी रात नींद नहीं आती। मैंने कहा, अरे भाई, शरीर उसने छोड़ा और दुखी तुम, वो उसका संबंधी भी नहीं लेकिन भयभीत, दुखी नहीं भयभीत। बहन ने कहा, टीचर बहन, मुझे मृत्यु पर भाषण करने जाना पड़ता है और मेरे लिए बहुत खतरनाक बात हो जाती है, मैं डरती रहती हूँ, जल्दी जल्दी जैसे तैसे आत्मा का ज्ञान देके आ जाती हूँ, डर, क्या करूँ मैं, संसार में डर बहुत छा जाएगा। हमें शक्तियों के वाइब्रेशंस फैलाकर, सबको ये ज्ञान देकर कि आत्मा अजर अविनाशी है, भय से मुक्त करना होगा। ये काम वही करेंगे जो बहुत अच्छे योगी और मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे, जिन्हें कोई डर नहीं, घर जाना है आनंद पूर्वक जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है, पहले ही छोड़ गए, पहले ही छोड़ दिया सर, मन से ही छोड़ दिया, मेरा कुछ नहीं। डराता तो ये है ना, हाय मेरी संपत्ति चली जाएगी, भयभीत। लेकिन जो पहले ही मेरे से मुक्त हो गए, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा, अगर विनाश होगा तेरा, मेरा थोड़ा ही, वो निर्भय रहेंगे। पांचवा काम, सभी को दुखों से मुक्त करना होगा। कौन करेंगे? बहुत लोग आएंगे आपके पास, सिर पे हाथ रख दो, सिर फटा जा रहा है टेंशन से, रिलैक्स करो हमें। ये भी आके कहेंगे माताओं को अपने घर का पानी पिला दो, हमारा चित्त शांत हो जाए। टीचर बहनों को ये भी कहेंगे अपने सेंटर में हमें 15 मिनट बैठ जाने दो, हमारे गम समाप्त हो जाएंगे। ये काम वही कर सकेंगे जो लंबा काल दुखों से मुक्त रहे, दुख की फीलिंग ही नहीं, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, बस सुख स्वरूप हूँ सो हूँ, दुख स्वरूप नहीं हूँ। जिन्होंने ईश्वरीय सुख अपने में भरे होंगे, मुरली का सुख, अमृत वेले का सुख, सेवाओं का सुख, परिवार का सुख, ये परिवार भी है ना, कोई इस परिवार में दुखी है कोई सुखी है, सुखों का खजाना जिसने भरा होगा वो सबके दुख हरेंगे। अभी आप अपने अपने कार्य चुन लेना। इम्पोर्टेंट बात रहेगी कि उन चीजों का इफेक्ट हम पर ना आए, ऐसे ना हो दुख फैल रहा हो और हम भी दुखी हो जाएं, हमारे मित्र संबंधियों को कुछ हो गया हम भी दुखी हो जाएं, दूसरों पर विघन आ गए उसका इफेक्ट हम पर भी आ जाए, चारों ओर भय का माहौल फैल जाए और हम भी भयभीत हो जाएं। जैसे अभी इराक की कोई वीडियो प्रचलित की है ना कहीं, तो कहा उसको देख भी नहीं सकते, मुझे कहा तुम भी देखो, मुझे कहा तुम भी देखो, साथ में ये भी कहा देख के तुम्हारा हाल खराब हो जाएगा। मैंने कहा मेरा हाल खराब नहीं होगा। कहा इतनी खराब है वो कि देखने वाले सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि क्या मनुष्य ऐसा भी होता है, क्या इसे ही मनुष्य कहते हैं। तो ये सब तो हमें देखना ही है ना, संसार वैसा तो नहीं है ना जैसा हम देखना चाहते हैं, जैसा संसार हमारे नैनों ने देखा है, देखा है ना सतयुग में, वैसा संसार यहाँ कहाँ मिलेगा। तो हमें इस संसार को भी देखना है, इस खेल को समाप्त होते भी देखना है, देखना है या नहीं, सब कुछ समाप्त होते हुए हम देखेंगे, देखेंगे खुश होंगे या नहीं। बाबा कहा करते हैं लोग चिल्लाएंगे ये हुआ ये मरा ये कष्ट हुआ, और तुम कहेंगे नहीं अपने घर गया, मुक्तिधाम में गया, दुखों से छूट गए। तो अपने को तैयार करेंगे बहुत अच्छी तरह, सोच लो हम पूर्वज हैं, एक जगह खड़े होकर ही संसार की पालना करेंगे, पहाड़ियों पर बैठकर संसार को रोशनी देंगे। ये काम सभी को करना है, चुन ले आप इस महान कार्य के लिए स्वयं को और तैयार करें, चिंतन कर लें, जिनको महान कार्य करने हैं उन्हें छोटी बातों में नहीं रहना है। यदि कोई मनुष्य घंटों घंटों व्यर्थ बातों में बिताएगा तो वो महान कार्य नहीं कर पाएगा। यदि कोई इधर उधर देखने में समय बिता देगा, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, तो वो महान कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, एक स्टूडेंट को भी एक हायर कंपटीशन देना है। अब हमारे ज्ञान के बहुत सारे बच्चे आईएएस का कंपटीशन देते हैं, मेरे से बात करते हैं, मैं देखता हूँ कितनी ज्यादा लगन है उनको, सब छोड़ दिया है, न खान पान में रुचि, न टीवी इंटरनेट फिल्म दुनिया किसी में रुचि नहीं, केवल इस एग्जाम में सफल होना है, आईएएस बनना है, किसी भी कीमत पर बनना है। रात दिन मेहनत कर रहे, एक अटेम्प्ट में सफल नहीं हुए, दूसरी बार दे रहे, तीसरी बार दे रहे हैं। हमें भी यदि महान कार्य करना है, एक है भविष्य की महान प्राप्ति, दूसरे हैं अब संगम युग के अंत के महान कार्य। सब इस गहन चिंतन में चले जाओ, बहुत अच्छी गुड फीलिंग से अपने को अनेक चीजों से मुक्त कर दें। आज की मुरली के अनुसार जरा भी मैंपन हमारी शक्तियों को समाप्त कर देता है, हमारी सफलता में बाधा डाल देता है। हमें अपने को योग्य बनाना है, काम करेगा बाबा हमारे द्वारा, हम नहीं करेंगे। हमें केवल अपने को योग्य बनाना है, हमारी दृष्टि से बाबा देखेगा और आत्माओं को दृष्टि से निहाल करेगा। हम केवल निमित्त होंगे, हमारे वाइब्रेशन से संसार के दुख दूर होंगे, पर ये काम बाबा के द्वारा होगा। हम ये लक्ष्य रखेंगे, अभी से हम बड़े बड़े काम करेंगे, लेकिन मैंपन से मुक्त होकर, मैंपन से मुक्त भी, और उस कार्य करने के बाद जो हमें वाह वाह मिलेगी, आज की मुरली में भी था ये सब, संसार तुम्हारा गुणगान करके ही अपने को धन्य धन्य मानेगा, याद है ना? हमें बहुत वाह वाह मिलेगी, सारा संसार हमें सम्मान देगा, हमारे चरणों में झुकेगा, लेकिन हमें ये सब बाबा को समर्पित कर देना है, इसको स्वीकार नहीं करना। हम ये भी कहेंगे हमारे चरण न छुओ, लेकिन छुएंगे लोग, लेकिन हम इसे अंदर नहीं जाने देंगे। मैंपन कहीं ना आए जीवन में, इसका बहुत ध्यान अभी से देंगे तो हमारा जीवन डिवाइन हो जाएगा। और यही असली बात है, आज जो बाबा ने कही ना, मेरे पास नोट हो गई, मैंने आज बहुत सारी पॉइंट नोट की आज की मुरली से अपने चिंतन के लिए। मैं और मेरेपन का त्याग ही अस्त्र रत्नों का आधार है। हम इसमें जोड़ लें, जिनको ये महान कार्य करने हैं उनका आधार भी मैं और मेरे का त्याग है। महात्याग है ये, सूक्ष्म त्याग है ये, इससे हम अपने को बहुत डिवाइन बनाएंगे। तो अब हम वो अभ्यास करेंगे 10 मिनट, ये आत्मा और ये शरीर बाबा की अमानत है, दे दें जरा उसे, उसने दिया है और हमने हम आकर इसमें बैठ गए, ऐसी फीलिंग में बैठेंगे, उसने दिया है और हम आकर इसमें बैठ गए महान कार्यों के लिए। अभी 10 मिनट कमेंट्री से योग करेंगे, ये देह बाबा की अमानत। और मैं आत्मा इसमें आकर बैठ गई भ्रकुटी की कुटिया में, सुख करता हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर लोक पर विराजमान हूँ। परम धाम में शिव बाबा की शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही है। परमात्म शक्तियां मुझ में समा रही हैं। ग्लोब के ऊपर बाबा की किरणें मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं। अब मैं आत्मा परम धाम में बाबा के साथ
अपने आप को जानो। बिछरा
सूक्ष्म हूं, मैं अविभाज्य हूं, कोई शस्त्र मुझे काट नहीं सकता, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, हवा मुझे उड़ा नहीं सकती और पानी मुझे भिगो नहीं सकता। कोई भी भौतिक पदार्थ मुझ आत्मा के पथ को रोक नहीं सकता। मैं आत्मा अविनाशी हूं और मेरा अस्तित्व सनातन है।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। I'm a peaceful soul। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति। इस संगम युग पर बाबा ने हम बच्चों को बहुत कीमती सौगात दी है। वो कौन सी है? बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को आकर दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र देता हूँ। ये तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि का नेत्र है। जिस दिव्य बुद्धि के नेत्र से हम आत्मा परमात्मा तीनों लोक तीनों काल सबको देख सकते हैं, अर्थात याद कर सकते हैं। लेकिन बाबा ने आज कहा है कि ये दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र ठीक काम कब करेगा। कई बार आंखों में डिफेक्ट हो जाती है या दिखाई नहीं देता है, तो ये तीसरा नेत्र भी कभी कभी डिफेक्टिव हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो कैसे हम इसको ठीक करें, कैसे इस नेत्र को ठीक करें जो हमें स्पष्ट दिखाई दे। वहां कोई ड्रॉप्स वॉप्स डालते हैं ना, कुछ तो करते हैं, ऑपरेशन भी करते हैं, कई प्रकार हैं। तो ये दिव्य बुद्धि नेत्र ठीक काम कब करेगा, अर्थात हमारी याद कब ठहर सकेगी, क्योंकि याद ही करते दिव्य बुद्धि से, तो उसके लिए क्या जरूरी है। तो आज बाबा ने कहा है उसके लिए बाबा से प्रीत बहुत जरूरी है। प्रीत बुद्धि होंगे तभी ये दिव्य नेत्र काम करेगा। अगर प्रीत बुद्धि नहीं है तो ये दिव्य नेत्र काम नहीं करेगा। तो आज बाबा ने विशेष इस पर जोर दिया है, और हम सब बाबा के बने, जीते जी मर गए तो दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र से बहुत सहज काम कर सकते। जब जीते जी मर जाते हैं, मर गए तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। कहते ना, आप मरे मर गई दुनिया। तो हम कैसे मरते हैं, जीते जी अशरीरी बन जाना माना जीते जी मर जाना। तो आज बाबा ने इस पर विशेष जोर दिया है। मीठे बच्चे, तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और दुनिया भूली हुई है। कब? जब अशरीरी बन बाप को याद करते हैं। प्रश्न है, बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? एक तो बाबा ने ये सौगात दिए, पर क्यों दिए ये, और ये कब काम सही करेगी? तो उत्तर है, बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? इस प्रश्न का जवाब, उत्तर, अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए। वैसे तो सब भक्त याद करते हैं, पर जो है जैसा है, अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है। परंतु यह तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहे, अर्थात एक बाप से सच्ची प्रीत हो। कैसे पता चले कि एक बाप से सच्ची प्रीत है, योग युक्त है? किसी के नाम रूप में लटके हुए न हो, क्योंकि नाम रूप याद आया तो बाप से प्रीत नहीं है। किसी के नाम रूप में लटके हुए न हो। माया प्रीत रखने में ही विघ्न डालती है, नाक कान से पकड़ लेती। आज बाबा ने कहा है इसी में बच्चे धोखा खाते हैं। तो गीत क्या होगा? मरने की बात है तो मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। इसके बाद की लाइन है मिट जाएगी दुनिया तेरी गली में, ऐसे है ना? क्या है ये? हाँ, ऐसे ही गीत है ना, मिट जाएगी दुनिया तेरी गली में। तो जैसे ये दुनिया ही सारी खत्म हो जाती है बाबा से जब प्रीत लगती होती है। ओम शांति, ओम शांति। सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के इस गीत का अर्थ कोई समझ न सके। जैसे वेद शास्त्र आदि बनाए हैं परंतु जो कुछ पढ़ते हैं उसका अर्थ नहीं समझ सकते, इसलिए बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूं। वैसे ही इन गीतों का अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, क्या अर्थ है? मिट जाएगी दुनिया तेरी गली में। तो बाबा कहते हैं गीतों का अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते, बाप ही इनका अर्थ बताते हैं। आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है, यह अर्थ, आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो दुनिया से सारा संबंध टूट जाता है। शरीर छोड़ा आत्मा ने, सब संबंध टूट गया सबसे। गीत भी कहता है अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करो तो ये दुनिया खत्म हो जाती है। जब ये करेंगे, ये शरीर तो इस पृथ्वी पर है, आत्मा इनसे निकल जाती है तो फिर उस समय उनके लिए मनुष्य सृष्टि है ही नहीं। जब तक दूसरे शरीर में प्रवेश करे तब तक उसके लिए मनुष्य सृष्टि है ही नहीं, आत्मा निकल गई शरीर से, आत्मा नंगी बन जाती है। फिर जब शरीर में आती है तो पाठ शुरू होता है, फिर एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है। वापिस महतत्व में नहीं जाना है, उड़कर दूसरे शरीर में जाती है। यहां इस आकाश तत्व में ही उनको पाठ बजाना है, मूल वतन में नहीं जाना है। जब शरीर छोड़ती है तो न वह कर्म बंधन है, न ये कर्म बंधन, न वो कर्म बंधन रहता। अभी जब तक नए शरीर में प्रवेश करे वो कर्म बंधन शुरू हो वो भी नहीं है, और इस शरीर से छूट गई तो न ये कर्म बंधन, दोनों कर्म बंधन से परे है। तो न ये कर्म बंधन, न वो कर्म बंधन रहता है, शरीर से ही अलग हो जाती है ना। फिर दूसरा शरीर लेती है तब कर्म बंधन शुरू होता है। ये बातें सिवाय तुम्हारे और कोई मनुष्य समझ न सके, मनुष्य और कोई मनुष्य नहीं जानते, बाप ने समझाया है। सब बिल्कुल ही बेसमझ हैं, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़ी हैं कि हम बेसमझ हैं, कहां समझते हैं? अपने को कितना अकलमंद समझते हैं, अकलमंदी क्या दिखाते हैं और है सब बेसमझी। ऐसी कौन सी अकलमंदी दिखाते हैं और है बेसमझी? क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं पीस प्राइज देते हैं, अभी अकलमंदी है या बेसमझी है? पीस कौन ला सकता है क्या इस इंसान सारे विश्व में? पीस प्राइज तो देते हैं। तो बाबा कहते हैं पीस प्राइज देते रहते हैं, ये भी तुम ब्राह्मण कुलभूषण अच्छी रीति समझ सकते हो। वो तो जानते ही नहीं कि पीस कहाँ किसको जाता है। कोई तो महात्माओं के पास जाते हैं कि मन की शांति कैसे हो, ये तो कहते हैं वर्ल्ड में शांति कैसे हो। जो पीस प्राइज देते हैं, माना जिसने कुछ सहयोग दिया विश्व में थोड़ी मदद करने के लिए या शांति लाने के लिए, तो उनको प्राइज देते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि निराकारी दुनिया में शांति कैसे हो, वहां की शांति कैसे हो की जरूरत नहीं, यहां शांति कैसे हो। अब वो तो है ही शांति धाम, हम आत्माएं शांति धाम में रहती है, परंतु वो तो मन की शांति कहते हैं। ये जानते नहीं कि शांति कैसे मिलेगी। शांति धाम तो अपना घर है, वहां शांति कैसे मिल सकती? वहां की तो प्रश्न की बात ही नहीं है। शांति मिलेगी, शरीर छोड़ देंगे वे तब शांति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, वहां शांति कैसे मिल सकती? हाँ, सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब है, वहां तो भले शांति कहेंगे परम धाम में, लेकिन आत्मा को तो कुछ अनुभव ही नहीं है, तो वहां शांति मिलेगी ये भी सोचना नहीं, सोचेंगे कैसे, यहाँ शांति चाहिए। हाँ, सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब है, जिसकी स्थापना बाप करते हैं, यहाँ तो कितनी अशांति है, ये सब अब तुम बच्चे ही समझते हो। सुख शांति संपत्ति भारत में ही थी, वो वर्षा था बाप का, और दुख अशांति कंगाल पना ये वर्षा है रावण का। ये सब बातें बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप परम धाम में रहने वाला नॉलेजफुल है, जो सुख धाम का हमको वर्षा देते हैं, वो हम आत्माओं को समझा रहे हैं। ये तो जानते हो, आत्माओं को समझा रहे हैं तो ये जानते हो कि नॉलेज आत्मा में ही होती है, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। शिव बाबा भी आत्मा है, ज्ञान का सागर है, वो ज्ञान का सागर इस शरीर